श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 30 गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान कृष्ण इस तरह एकाएक विलुप्त हो गए तो गोपियां उन्हें न देख सकने के कारण अत्यंत व्यतीत हो उठी। जिस तरह हथनियों का समूह अपने नर के बिछुड़ जाने पर खिन्न हो उठता है, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते ही गोपियों के हृदय उनकी चाल डाल तथा प्रेममयी मुस्कान, उनकी कौतुकपूर्ण चितवन तथा मोहने वाली बातों तथा अपने साथ की जाने वाली अन्य लीलाओं से अभिभूत हो उठे। इस तरह रमा के स्वामी कृष्ण के विचारों में लीन वे गोपियां उनकी विविध दिव्य लीलाओं चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। क्योंकि प्रेम प्रिय गोपियां अपने प्रिय कृष्ण के विचारों में लीन थी, अतः कृष्ण गोपियों के शरीर के चलने तथा हंसने के ढंग, उनके देखने के ढंग, उनकी वाणी तथा उनके अन्य विलक्षण गुणों का अनुकरण करने लगे। उनके चिंतन में गहरी डूबी हुई तथा उनकी लीलाओं का स्मरण करके उन्मत्त हुई गोपियों ने परस्पर घोषित कर दिया कि मैं कृष्ण ही हूँ। जोर जोर से कृष्ण के बारे में गाती हुई गोपियों ने पगलाई स्त्रियों के झुंड के समान उन्हें वृंदावन के पूरे जंगल में खोजा। यहाँ तक कि वृक्षों से भी उन कृष्ण के विषय में पूछताछ की, जो समस्त उत्पन्न वस्तुओं के भीतर तथा बाहर आकाश की भांति परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं। गोपियों ने कहा, हे अश्वत्थ वृक्ष, हे प्लक्ष, हे नयग्रोध, क्या तुमने कृष्ण को देखा है? वह नंद नंदन अपनी प्रेम भरी मुस्कान तथा चितवन से हमारे चितों को चुरा कर चला गया है। हे कुर्बक वृक्ष, हे अशोक, हे नाग केसर, पुन्नाग तथा चंपक, क्या इस रास्ते से होकर बलराम का छोटा भाई गया है, जिसकी हंसी समस्त अभिमान करने वाली स्त्रियों के दर्प को हरने वाली है? हे अत्यंत दयालु तुलसी, तुम्हें तो गोविंद के चरण इतने प्रिय हैं, क्या तुमने अपने को तुलसी पहने और भौरों के झुंड से घिरे हुए उन अच्युत को इधर से जाते हुए देखा है? हे मालती, हे मल्लिका, हे जाति तथा युतिका, क्या माधव तुम सबों को अपने हाथ का स्पर्श सुख देते हुए इधर से गए हैं? हे चूत, हे प्रियाल, हे पनक, हे आसन तथा कोविदार, हे जंबू, हे अर्क, हे बिल्ब, बकुल तथा आम्र, हे कदम तथा नीप एवं यमुना के तट के समीप स्थित अन्य सारे पौधों और वृक्षों, अन्यों के उपकार के लिए अपना जीवन अर्पित करने वालों, हम गोपियों के मन चुरा लिए गए हैं, अतः कृपा करके हमें बतलाएं कि कृष्ण गए कहां हैं। हे माता पृथ्वी, आपने भगवान केशव के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए ऐसी कौन सी तपस्या की है जिससे उत्पन्न परम आनंद से आपके शरीर में रोमांच हो आया है। इस अवस्था में आप अतीव सुंदर लग रही हैं। क्या भगवान के इसी प्राकट्य के समय आपको यह भाव लक्षण प्राप्त हुए हैं, या फिर और पहले जब उन्होंने आप पर वामन देव के रूप में अपने पांव रखे थे, या इससे भी पूर्व जब उन्होंने वराह देव के रूप में आपका आलिंगन किया था। हे सखी हिरनी, क्या तुम्हारी आंखों को परमानंद प्रदान करने वाले भगवान अच्युत अपनी प्रिया समेत इधर आए थे? दरअसल इस और कुंद फूलों से बनी उनकी उस माला की महक आ रही है जो उनके द्वारा आलिंगित उनकी प्रिय सखी के स्तनों पर लगे कुमकुम से लेपित थी। हे वृक्षों, हम देख रही हैं कि तुम झुक रहे हो। क्या जब राम के छोटे भाई इधर से गए, जिनके पीछे पीछे गले में सुशोभित तुलसी मंजरी की माला के चारों ओर उन्मत्त भौरे मंडरा रहे थे, तो उन्होंने अपनी स्नेह पूर्ण चितवन से तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार किया था? वे अपनी बाह अवश्य ही अपनी प्रिया के कंधे पर रखे रहे होंगे और अपने खाली हाथ में कमल का फूल लिए रहे होंगे। चलो इन लताओं से कृष्ण के विषय में पूछा जाए। यद्यपि वे अपने पति रूप इस वृक्ष की बाहों का आलिंगन कर रही हैं, किंतु अवश्य ही कृष्ण ने अपने नाखूनों से इनका स्पर्श किया होगा, क्योंकि प्रसन्नता के मारे इनकी त्वचा पर फफोले प्रकट हो रहे हैं। ये शब्द कहने के बाद कृष्ण को खोजते खोजते किंग कर्तव्य विमूढ़ हुई गोपियां अपने विचारों में पूर्णतया लीन होकर उनकी विविध लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक गोपी ने पूतना की नकल उतारी, जबकि दूसरी बालक कृष्ण बन गई और वह पहले वाली का तन पान करने लगी। अन्य गोपी ने शिशु कृष्ण के रोदन का अनुकरण करते हुए उस गोपी पर पाद प्रहार किया जो शक्तासुर की भूमिका निभा रही थी। एक गोपी तृणावर्त बन गई और वह दूसरी गोपी को, जो बालक कृष्ण बनी थी, दूर ले गई, जबकि एक अन्य गोपी रेंगने लगी जिससे उसके पांव घसीटते समय पायजेब बजने लगी। दो गोपियां उन तमाम गोपियों के बीच राम तथा कृष्ण बन गई जो ग्वाल बालों का अभिनय कर रही थी। एक गोपी ने कृष्ण द्वारा राक्षस वत्सासुर के वध का अनुकरण किया, जिसमें दूसरी गोपी वत्सासुर बनी थी। गोपियों के एक जोड़े ने बकासुर वध का अभिनय किया। जब एक गोपी ने पूरी तरह अनुकरण कर दिखाया कि कृष्ण किस तरह दूर विचरण करती गोवों को बुलाते थे, वे किस तरह वंशी बजाते थे और वे किस तरह विविध खेलों में लगे रहते थे, तो अन्यों ने बहुत खूब बहुत खूब वाह वाह चिल्लाकर बधाई दी। एक अन्य गोपी अपने मन को कृष्ण में स्थिर किए अपनी बाह को दूसरी सखी के कंधे पर टिकाए चलने लगी और बोली, मैं कृष्ण हूँ, जरा देखो तो मैं कितनी शान से चल रही हूँ। एक गोपी ने कहा, आंधी वर्षा से मत डरो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह कहकर उसने अपना दुपट्टा अपने सिर के ऊपर उठा लिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक गोपी दूसरी के कंधे पर चढ़ गई और अपना पांव एक अन्य गोपी के सिर पर रखती हुई बोली, रे दुष्ट सर्प, यहां से चले जाओ। तुम जान लो कि मैंने इस जगत में दुष्टों को दंड देने के लिए ही जन्म लिया है। तब एक दूसरी गोपी बोल पड़ी, मेरे प्रिय ग्वाल बालों, जंगल में लगी इस आग को तो देखो, तुरंत अपनी आंखें मूंद लो, मैं आसानी से तुम्हारी रक्षा करूंगी। एक गोपी ने अपनी एक छरहरी सी सखी को फूलों की माला से बांध दिया और कहा, अब मैं इस बालक को बांध दूंगी जिसने मक्खन की हंडियां तोड़ दी है और मक्खन चुरा लिया है। तब दूसरी गोपी अपना मुंह तथा सुंदर आंखें अपने हाथ से ढक कर भयभीत होने की नकल करने लगी। जब गोपियां इस तरह कृष्ण की लीलाओं की नकल उतार रही थी और वृंदावन की लताओं तथा वृक्षों से पूछ रही थी कि भगवान कृष्ण कहाँ हो सकते हैं, तो उन्हें जंगल के एक कोने में उनके पद चिन्ह दिख गए। गोपियों ने कहा, इन पद चिन्हों में ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश, जों की बाली इत्यादि के चिन्ह स्पष्ट बतलाते हैं कि ये नंद महाराज के पुत्र उसी महान आत्मा कृष्ण के हैं। गोपियां श्री कृष्ण के अनेक पद चिन्हों से प्रदर्शित उनके मार्ग का अनुमान करने लगी, किंतु जब उन्होंने देखा कि ये चिन्ह उनकी प्रियतमा के चरण चिन्हों से मिलजुल गए हैं तो वे व्याकुल हो उठी और इस प्रकार कहने लगी। गोपियों ने कहा, यहाँ पर हमें किसी गोपी के चरण चिन्ह दिख रहे हैं जो अवश्य ही नंद महाराज के पुत्र के साथ साथ चल रही होगी। उन्होंने उसके कंधे पर अपना हाथ उसी तरह रखा होगा जिस तरह एक हाथी अपनी सूंड अपनी सहगामिनी हाथी के कंधे पर रख देता है। इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे उससे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबों को छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। हे बालाओ, गोविंद के चरणों की धूल इतनी पवित्र है कि ब्रह्मा, शिव तथा रमा देवी भी अपने पापों को दूर करने के लिए उस धूल को अपने सिरों पर धारण करते हैं। उस विशिष्ट गोपी के ये चरण चिन्ह हमें अत्यधिक विचलित कर रहे हैं। समस्त गोपियों में से केवल वही एकांत स्थान में ले जाई गई जहां वह कृष्ण के अधरों का पान कर रही है। देखो ना, हमें यहाँ पर उसके पद चिन्ह नहीं दिख रहे। स्पष्ट है कि घास तथा कुश उसके पाँव के कोमल तलवों को कष्ट पहुंचा रहे होंगे, अतः प्रेमी ने अपनी प्रेयसी को उठा लिया होगा। मेरी प्यारी गोपियों, जरा देखो ना किस तरह इस स्थान पर कामी कृष्ण के पद चिन्ह पृथ्वी में गहरे धंसे हुए हैं। अपनी प्रियतमा के भार को वहन करना अवश्य ही उनके लिए कठिन हो रहा होगा, और यहाँ पर तो उस चतुर छोरे ने कुछ फूल चुनने के लिए उसे नीचे रख दिया होगा। जरा देखो ना किस तरह प्रिय कृष्ण ने यहाँ पर अपनी प्रिया के लिए फूल चुने हैं। यहाँ उनके पांव के अगले हिस्से पंजे का ही निशान पड़ा हुआ है, क्योंकि फूलों तक पहुँचने के लिए वे अपने पंजों के बल खड़े हुए थे। कृष्ण यहाँ पर निश्चित रूप से अपनी प्रेयसी के साथ उसके केश संवारने के लिए बैठे थे। उस कामी लड़के ने उस कामुक लड़की के लिए उन फूलों से जूड़ा बनाया होगा जिसे उसने एकत्र किया था। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण ने उस गोपी के साथ भोग विलास किया, यद्यपि वे अपने आप में तुष्ट रहने तथा पूर्ण होने के कारण केवल भीतर ही भीतर आनंद मग्न होते हैं। इस तरह विरोधोभास के द्वारा उन्होंने सामान्य कामी पुरुषों एवं निष्ठुर स्त्रियों की दुष्टता का प्रदर्शन किया। जब गोपियां पूर्णतया भ्रमित मनों से घूम रही थी तो उन्होंने कृष्ण लीलाओं के विविध चिन्हों की ओर संकेत किया। वह विशिष्ट गोपी जिसे कृष्ण अन्य युवतियों को त्याग कर एकांत जंगल में ले गए थे, अपने को सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझने लगी। उसने सोचा, मेरे प्रियतम ने उन अन्य समस्त गोपियों का तिरस्कार कर दिया है, यद्यपि वे साक्षात कामदेव के वशीभूत हैं। उन्होंने केवल मेरे ही साथ प्रेम करने का चुनाव किया है। जब दोनों प्रेमी वृंदावन जंगल के एक भाग से जा रहे थे तो विशिष्ट गोपी को अपने ऊपर गर्व हो आया। उसने भगवान केशव से कहा, अब मुझसे और नहीं चला जाता, आप जहां भी जाना चाहे मुझे उठाकर ले चलें। ऐसा कहे जाने पर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरे कंधे पर चढ़ जाओ, किंतु यह कहते ही वे विलुप्त हो गए। उनकी प्रिया को तब अत्यधिक क्लेश हुआ, वह चिल्ला उठी, हे स्वामी, हे प्रेमी, हे प्रियतम, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, हे मित्र, अपनी दासी बेचारी को अपना दर्शन दो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण के रास्ते को खोजती हुई गोपियों ने अपनी दुखी सखी को पास में ही ढूंढ निकाला। वह अपने प्रेमी के विछोह से मोहग्रस्त थी। उसने उन्हें बताया कि माधव ने उसको कितना आदर मान प्रदान किया था, किंतु अब उसे अपने दुर्व्यवहार के कारण अनादर झेलना पड़ा। गोपियां यह सुनकर अत्यंत विस्मित थी। तत्पश्चात गोपियां कृष्ण की खोज में जंगल के भीतर उतनी दूर तक गई जहां तक चंद्रमा की चांदनी थी, किंतु जब उन्होंने अपने को अंधकार से गिरता देखा तो उन्होंने लौट आने का निश्चय किया। उन सब के मन उनके कृष्ण के विचारों में लीन होने से वे उन्हीं के विषय में बातें करने लगी। उन्हीं की लीलाओं का अनुकरण करने लगी और अपने को उनकी उपस्थिति से पूरित अनुभव करने लगी। वे अपने घरों के विषय में पूरी तरह भूल गई और कृष्ण के दिव्य गुणों का जोर जोर से गुणगान करने लगी। गोपियां फिर से कालिंदी के किनारे आ गईं। कृष्ण का ध्यान करते तथा उत्सुकता पूर्वक यह आशा लगाए कि वे आएंगे ही, वे उनके विषय में गीत गाने के लिए एक साथ बैठ गईं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज नामक 30वें अध्याय के श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।